SBS हिंदी।
दोस्तों, खबरें हैं कि भारत सरकार इस विषय पर विचार विमर्श कर रही है कि जो NRI हस्बैंड्स अपनी बीवियों को डिजर्ट कर देते हैं, यानी जो प्रवासी भारतीय पति अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। तो इस विषय पर हमने सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अनीता बापना से बात की।
ये जो भारत सरकार ने NRI हस्बैंड्स पर जो अपना, वो मैं बोलूंगी ही पुकारा है, उसका रीजन ये है कि पिछले 10 सालों में 2007 से अगर आप आंकड़े देखेंगे सिर्फ पंजाब के, तो कम से कम 25,000 लड़कियां या जो नवविवाहित वधुएं हैं या फिर कुछ एक दो साल हो गए बच्चे पैदा हो गए, वो बॉम्बे आ गई या फिर देश में आ गई, तो वापस जा नहीं पाई है कि या तो उनको वापस लेने गए, कुछ लोगों को तो हनीमून के बाद ही छोड़ दिया गया है, ऐसे भी उदाहरण है। तो इसमें अगर वो लड़की जो भी पत्नी है वो वहाँ देश में आकर, हमारे देश में आकर, भारत देश में आकर वापस कोर्ट के समन्स भेजती है, केस फाइल करती है, तो उनका कोई अता पता नहीं होता है। ऐसे समय वो बोलते ना डेजर्टेड हो जाती है, उनको कोई ऐसे पति को कहाँ ढूंढे। तो कई सालों से ये चल रहा था कि कुछ ऐसा किया जाए कि इनको किसी भी तरह इनको ट्रैश कर सकते हैं और इन औरतों को कुछ ना कुछ राहत मिले, जस्टिस मिले। तब ये पहली बार ऐसे हुआ है कि एक कमिटी बनी है, उस कमिटी ने कहा है कि एक वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट पर जो समन्स कोर्ट के होते हैं, बेसिकली मैं लीगल बैकग्राउंड से बताऊंगी, जो कोर्ट के समन्स होते हैं और वारंट्स होते हैं, वो हमको दूसरे देश में उस आदमी को सर्व करने में, उस हस्बैंड को सर्व करने में बहुत समय लगता है, और 1.5 साल 2 साल 3 साल। जब भी मेरे पास कोई केस डिवोर्स का या ऐसी परिसेक्टर लेडी का आता है जो बाहर से है, जिसका जिसकी शादी NRI से हुई है, मैं हम उसको पूरे देश में, वर्ल्ड में कहीं ढूंढ नहीं पाते हैं, समन्स लौट के वापस आ जाता है, ऐसे समय में हम क्या करेंगे। तो अब गवर्नमेंट ने एक ऐसा रास्ता निकाला कि हम ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जिसपे समन्स नोटिसेस 2-3 बार पब्लिश हो जाएगी, और उसके बाद अगर वो नहीं उसको रिस्पॉन्ड करता है तो जो इसकी प्रॉपर्टी है हमारे देश में, भारत में, उस पर हम उसको अटैचमेंट कर सकते हैं। उसका जो अगर उसकी ज्वाइंट शेयर प्रॉपर्टी है फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर्स के, उसकी मदर या फादर या भाई बहनों के साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलते हैं, पारंपरिक पितृक प्रॉपर्टी, उसको भी हम अटैच कर सकते हैं। इसकी वजह से इनको जल्दी में, हम लोग बहुत जल्दी से इनको मतलब कोर्ट की गिरफ्त में ला सकते हैं और ये मामले जल्दी जल्दी निपटाए जा सकते हैं। इसका बेसिक रीजन यही था कि इन मामलों को जल्दी निपटाया जाए। आप अगर आंकड़े देखेंगे तो 2007 से सिर्फ पंजाब से 25,000 है, और देश भर की अगर लड़कियों का ब्यौरा तो अभी अवेलेबल ही नहीं हमारे पास। तो कम से कम ऐसा तो हो कि ऐसा अगर वो आदमी हमें रिस्पॉन्ड ना करे तो, मतलब जिससे शादी हुई है उस समय, उसको समन्स हम कैसे सर्व करेंगे कोर्ट की, कोर्ट से, क्योंकि कई बहुत बार ऐसा होता है कि जब दूसरे देश में होता है बहुत दिक्कत होती है कोर्ट में। मैं वकील हूँ, मुझे पता है कि सिंगापुर से लड़की आई थी, हम उसके केस में 2-2.5 साल तक समन्स ही सर्व नहीं कर पाए थे, और उसकी फैमिली का इस हमारे देश में कोई अता पता नहीं था, उसको एक बच्चा भी था। तो आप सोचिए उस बच्चे को कब मेंटेनेंस मिलेगा जब 2-2.5-3 साल होगा
जी।
तो इसका सबसे अच्छा कारण ये होगा कि ये जो बच्चे हैं, ये जो औरतें हैं, इनको न्याय मिलने में आसानी और जल्द न्याय होगा
जी। बस आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये अगर कानून पारित हो जाता है, अभी तो इस पर विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन इसको लागू करना क्या पॉसिबल होगा? क्या आपको लगता है कि कानूनी परिपेक्ष में कि ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल होगा या नहीं होगा?
हाँ, इसके दो भागों में मैं डिवाइड करूंगी। सबसे पहला है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगी तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि किसी को भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि शादी हो गई, उसने लड़की को, बीवी को और बच्चों को छोड़ दिया तो तुरंत उसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो जाएगी। वो लड़की जब महाराष्ट्र में या फिर दिल्ली में, इस देश में कहीं भी केस करेगी तो उसका जो समन्स कोर्ट का जाएगा वो बाकायदा जाएगा, वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो उन लोगों पर इस कानून की कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। लेकिन वो समन्स सब नहीं करता है, कोर्ट में नहीं आता है, वो कुछ भी केस में हाजिर ही नहीं होगा, तो उसको समन्स सब नहीं होता तो कोर्ट के केस आगे नहीं बढ़ती है। इसके लिए एक वेबसाइट बनाई जाएगी, उस वेबसाइट पे वो समन्स डाला जाएगा और कुछ समय दिया जाएगा, कितने समय के बाद आपको इस देश में हाजिर होना है। जो NRI है उनकी शादी भी 48 घंटे में रजिस्टर करने को बोला गया है, तो ये वेबसाइट एक बनाई जाएगी। और अब इम्प्लीमेंटेशन का भाग है कि अगर आप कोर्ट में नहीं आओगे तो ऐसा समझाया जाएगा कि आप भगोड़े हो, आप समझ रहे, भगोड़े का मतलब ये होता है कि प्रोक्लेमेशन हो गया कि आप अवेलेबल नहीं हो, तो उस समय आपकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट होगी। तो लीगल प्रोसीजर बड़ा सीधा और बड़ा सिंपल है। अगर आप कानून के सामने आके अपना पक्ष रखोगे एज अ हस्बैंड, हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि हमेशा लड़का ही गलत हो सकता है, लड़की भी गलत हो सकती है, सही है, लेकिन उसके लिए आप कोर्ट में तो आए और आप अपना पक्ष रखे, तो सरकार या कोर्ट आपको समय दे रही है, लेकिन आप कोर्ट के सामने ही नहीं आओगे, आप इस देश को के कानून सिस्टम, जो लीगल सिस्टम है, उसको फेस ही नहीं करोगे और अपना पक्ष नहीं रखोगे, तो उस समय सरकार इस कानून को इम्प्लीमेंट करने में बिल्कुल सही है। और ये कठिन भले दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा कदम है उन लोगों के लिए जो भगोड़े होते हैं, जो मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते हैं। तो ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में भी ये बहुत सिंपल चीज है कि अगर आप, आपको समझ निकला है, आपकी वाइफ ने आके यहाँ कंप्लेंट की है और आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तो यहाँ का जो कानून है जो बनेगा वो इम्प्लीमेंट होगा और आप फेस नहीं करोगे उसको, सामने आके जवाब नहीं दोगे, तो वो आपकी जो प्रॉपर्टी है देश में उसको, उस पर वो सरकार या जो भी कानून बनेगा ये कोर्ट जो भी होगा वो कॉन्फिसकेट करके जो रिलीफ मिलेगा उस लड़की को, मेंटेनेंस कह दीजिए, उसका डिवोर्स में उसको एलिमनी कह दीजिए, जो उसको बोलते हैं कि खाने पीने का, उसका भविष्य के लिए जो भी प्रोविजन होगा वो इस पैसे में से होगा, आपकी प्रॉपर्टी में से होगा, जो इस देश में होगी। इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है क्योंकि कोई उसमें से कानून के बहुत लूपहोल होते हैं वो निकाल देंगे, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी ये बहुत सही कदम है कि कहीं ना कहीं इसका परिणाम ये होगा कि कम से कम कोर्ट के समन्स और कोर्ट के वारंट या जो भी प्रोसीडिंग्स है, नोटिसेस है, हम बड़ी आसानी से मतलब सर्विस कर देंगे। नहीं तो यहाँ से कुरियर करो या फिर वहां पर दूसरे देश में डिप्लोमेट से हमको सर्विस कराना, वहां जो एम्बेसी होती है, बड़ा मुश्किल होता है।
वहीं इस विषय पर और जानने के लिए हमने ऑस्ट्रेलिया में लॉ लेक्चरर और फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मीडिएटर रीटा वर्मा से भी जानकारी ली।
लॉ के बारे में थोड़ा सा पहले बताऊंगी, ये गोयल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, जो 6 रिकमेंडेशंस उन्होंने बनाई थी, जिसमें उन्होंने बोला कि जो एनआरआई हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं उनके पासपोर्ट ले लेने चाहिए, वो मैरिज को रजिस्ट्रेशन उसकी कंपल्सरी करनी चाहिए एंड फैमिली बैलेंस को इसके अंदर लाना चाहिए, और ये प्रॉपर्टी की जो आप बात कर रहे हो, आई थिंक इट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज काफी देर से ये चल रहा है, काफी सालों से एक्चुअली ये चल रहा है, तो ये गवर्नमेंट ने का जो इनिशिएटिव है, इन धोखेबाज, मैं कह सकूं तो धोखेबाज एनआरआई हस्बैंड्स के को टारगेट करता है, और जो आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है वो ले ली जाएगी, बिकॉज इस जो डिजर्टेड वाइफ है उसका कुछ ना कुछ तो जस्टिस मिलना चाहिए, तो वो अबेंडन हो जाती है, पेरेंट्स ने ऑलरेडी इतना पैसा मैरिज पे खर्च किया है, तो मैं सोचती हूँ ये जो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है अच्छा इनिशिएटिव है। ये जो इशू है कि वाइफ को डिजर्ट करना, ये एक गंभीर इशू है, गवर्नमेंट ने कहीं से कहीं तो स्टार्ट करना ही है।
sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाए।